नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 31 और 32। हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुन विशाल वृषभौजस्विन् देवप्रस्थ वरुथप पश्यैतान् महाभागा परार्थैकांत जीविता वातवर्षातपहिमान् सहन्तो वारयन्तिनः। हे स्तोक कृष्ण हे स्तोक कृष्ण हे अंशो हे अंशु श्रीदामन सुबल अर्जुन। हे श्रीदामा सुबल तथा अर्जुन विशाल वृषभ ओजस्विन हे विशाल वृषभ तथा ओजस्वी देवप्रस्थ वरुथप हे देवप्रस्थ तथा वरुथप पश्यत जरा देखो तो एतान इन महाभागान परम भाग्यशाली पर अर्थ अन्यों के लाभ हेतु एकांत एकांत भाव से जीवितान जिनका जीवन वात वायु वर्ष वर्षा आतप सूर्य की तपन हीमान तथा बर्फ सहंतः सहते हुए वारयंती दूर रखते हैं नह हमारे लिए। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। भगवान कृष्ण ने कहा हे स्तोक कृष्ण तथा अंशु हे श्रीदामा सुबल तथा अर्जुन हे ऋषभ ओजस्वी देवप्रस्थ तथा वरुथप जरा इन भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो जिनके जीवन ही अन्यों के लाभ हेतु समर्पित हैं। वे हवा वर्षा धूप तथा बर्फ को सहते हुए भी इन तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण पाषाण हृदय कर्मकांडी ब्राह्मणों की पत्नियों पर अपनी दया का दान करने की तैयारी कर रहे थे और इन श्लोकों में वे इंगित कर रहे हैं कि अन्यों के कल्याण के लिए समर्पित वृक्ष भी उन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं जो परोपकारी नहीं हैं। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस बात का गंभीरता से अध्ययन कर करना चाहिए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे रविवार के भागवतम क्लास में। हमारा पिछला उपाख्यान अजामिल का रहा था और उसके पश्चात हमने सोचा कि उसी छठे स्कंद से आगे के उपाख्यान हम लें, जैसे कि महाराज चित्रकेतु, वृत्रासुर इत्यादि। परंतु जब हमने ये देखा कि अब आने वाले हफ्ते में कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने बहुत ही जो सुमधुर लीलाएं इस कार्तिक के महीने में की, तो हमने सोचा उस चेतना में हम अपने आप को ढालें। इसलिए हमने छठे स्कंद को कुछ समय के लिए विराम दिया है कार्तिक के महीने तक, और अब हम चर्चा प्रारंभ करेंगे दशम स्कंद से। विशेष रूप से मैंने सोचा कि गोवर्धन लीला से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है इस पर हम चर्चा करें, और फिर ये जो लीला हुई कार्तिक के महीने में हुई गोवर्धन लीला, तो अब तक कार्तिक का महीना प्रारंभ नहीं हुआ है, ये अश्विन का महीना चल रहा है। कार्तिक के पहले का जो महीना है उसको कहते हैं अश्विन का महीना। तो अश्विन के महीने में अर्थात गोवर्धन लीला से पहले, जो कि कार्तिक में हुई, भगवान श्री कृष्ण ने याज्ञिक ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उनका उद्धार किया, और इसका कनेक्शन भी है, इस लीला का और गोवर्धन लीला का कनेक्शन है सिद्धांत के रूप में और यहां तक कि स्थली के रूप में। ये जो याज्ञिक ब्राह्मण जिस स्थल पर यज्ञ कर रहे थे, आंगिरास यज्ञ, उसी स्थल पर आगे चलकर नंद महाराज ने इंद्र याग करने का सोचा। ये स्थल है अक्रूर घाट के निकट यमुना के तट पर। तो जहां पर ये सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर स्वर्ग की प्राप्ति हेतु ये आंगिरास यज्ञ कर रहे थे, कौन से महीने में, इसी समय, ये जो अश्विन चल रहा है तो तकरीबन इसी समय ये वाली लीला हुई। कौन सी? भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और ग्वाल बालों को भेजा दक्षिणा मांगने के लिए। तो इसलिए हम इस लीला से प्रारंभ करेंगे क्योंकि अश्विन का महीना चल रहा है, और फिर जैसे हम कार्तिक में प्रवेश करेंगे तो उसके साथ साथ हम गोवर्धन लीला में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं, सारे अपने गोप सखाओं को, स्तोक कृष्ण, सुबल, अर्जुन, वरुत्थप इत्यादि, इनको वृंदावन के कल्प वृक्ष दिखाते हुए और उनके गुणों का बखान करते हुए भगवान श्री कृष्ण मानो इन्हें यह बता रहे हैं कि आगे चलकर तुम जब अनुभव करोगे कि ये जो विद्वत ब्राह्मण जो कि इस यज्ञ में लगे हुए हैं अपने आप को इतना प्रगत और विद्वान मानते हैं, इनसे कहीं ऊंचे हैं ये वृक्ष वृंदावन के, क्योंकि ये अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं दूसरों के परोपकार के लिए, और ये ब्राह्मण केवल संकुचित मन वाले, संकुचित बुद्धि वाले केवल यही मानेंगे कि हम हमारी विद्वत्ता और हमारा ये यज्ञ और उस यज्ञ का फल। तो तात्पर्य में हमने पढ़ा कि भगवान इंगित कर रहे थे कि ये वृक्ष भले उनसे। तो गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को सुधारा, जिनका एक और नाम है या जिनको एक और पद दिया गया है नरदेव। देवराज इंद्र को नरदेव भी कहते हैं, हम सब नरों के देव। और ब्राह्मण इस पृथ्वी पर उनको भूदेव कहा जाता है। तो गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने नरदेव को सुधारा, देवराज इंद्र को। और ये जो लीला जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें भूदेवों को सुधारा, इन ब्राह्मणों को सुधारा। तो भूदेवों को कैसे सुधारा? वृक्षों का उदाहरण देकर। और नरदेव को एक पर्वत के द्वारा सुधारा। सो कृष्णा रेक्टिफाइड द भूदेवस ब्राह्मणस यूजिंग द ट्रीज ऑफ वृंदावन एंड ही करेक्टेड नरदेव लॉर्ड इंद्र यूजिंग अ माउंटेन श्री गोवर्धन फ्रॉम वृंदावन। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है त्रुटि रक्षक। विभिन्न नामों में से भगवान का एक नाम है त्रुटि रक्षक। और हम साधकों के लिए ये नाम सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान के जो बाकी नाम है, हां वो भी महत्वपूर्ण है, परंतु जो हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति को देखते हुए रास बिहारी भगवान का एक ये जो नाम है, ऐसे नामों से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा नाम है हमारे लिए? त्रुटि रक्षक। कि हमारी त्रुटियों को ठीक कर कर जो हमारी रक्षा करें। और कितनी त्रुटियां हैं हमारे अंदर? जितने भगवान के अनगिनत अवतार हैं। जितनी लहरें हैं समुद्र के अंदर कोई गिन सकता है? कलेर दोष इसलिए कहा गया है निधे, कि जैसे एक निधि एक समुद्र में जो कि लहरों से परिप्लुत है, उसी प्रकार से कलयुग में हम कलयुगी जीव त्रुटियों से परिप्लुत है। तो ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई हमको तो भगवान का जो रास बिहारी नाम है, श्याम सुंदर नाम है, ये सारे नाम ज्यादा मनोहर लगते हैं, ये त्रुटि रक्षक बहुत ड्राई हो रहा है, ये त्रुटि रक्षक नाम बहुत हेवी लग रहा है। मानो कि कोई नर्सरी का स्टूडेंट है, केजी, कोई केजी का स्टूडेंट है और उसको अभी तक एबीसीडी भी नहीं पता, कैसे बोलते हैं कैसे लिखते हैं। और अगर वो इच्छा करे कि मैं किसी पीएचडी प्रोफेसर से कुछ एडवांस सब्जेक्ट सीखूं, तो उसके माता पिता उसे क्या कहेंगे? उसके माता पिता कहेंगे भाई तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा टीचर है इस समय? केजी टीचर, नर्सरी का टीचर जो तेरे को एबीसीडी हाथ पकड़कर सिखाए। तो उसी प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम लोग सब अब तक नर्सरी में हैं, केजी में, वो भी लोअर केजी में, और इतनी त्रुटियों के साथ लड़खड़ाते हुए जो कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं एबीसीडी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो हमारे लिए भगवान त्रुटि रक्षक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान गोवर्धन लीला में देखे कि इस अक्रूर घाट के निकट, यमुना के निकट इस स्थली पर नंद महाराज इत्यादि बाकी गोप सखागण जो यज्ञ इंद्रयाग में लगे हुए हैं, तो इससे पहले, क्योंकि वो यज्ञ स्थली थी, तो इससे पहले भगवान अब यहां पर ये जो अध्याय है इस लीला के पश्चात, गोपियों के चीरहरण लीला के पश्चात, भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ बस विचरण कर रहे हैं वृंदावन में। तो अब भगवान जब विचरण करते हैं, भगवान जब भ्रमण करते हैं, तो भगवान हर एक क्षण इस भौतिक संसार में किसी न किसी प्रयोजन से कुछ न कुछ कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम जब घूमने जाते हैं तो कुछ खास प्रयोजन नहीं होता, हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रयोजन हो कि ठीक है भाई घूमने फिरने जा रहे हैं, परंतु हर एक क्षण उस भ्रमण में क्या हम मन में किसी प्रयोजन को लेकर कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं? नहीं। तो यहां पर बाहर से दिख रहा होगा कि भगवान खेल रहे हैं, आजकल की भाषा में टाइम पास हो रहा है, खेल रहे हैं बस, किसके साथ? ग्वाल सखाओं के साथ। लेकिन प्रभुपाद ने हमें क्या बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हर समय पास्ट टाइम ही होता है, हमारे संदर्भ में उल्टा। तो भगवान भ्रमण करते करते वृक्षों को देखते देखते अब आगे चलकर ऐसी महत्वपूर्ण लीला दर्शाने वाले हैं, इन ब्राह्मणों का उद्धार और इन ब्राह्मणों के साथ साथ इनकी पत्नियों का उद्धार। तो जब एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो कि इस यज्ञ स्थली अक्रूर घाट के निकट, तो गोप सखागण, अब देखिए वो कितने कृष्ण भावना भावित हैं कि भगवान के साथ हैं परंतु हर समय खेल रहे हैं, बाकी सारे कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर समय उनका केंद्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का केंद्र है इन ग्वाल सखाओं को प्रसन्न करना। तो अब कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में कहते हैं कि एक तरफ ग्वाल सखा और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, दोनों को भूख लगी, दोनों पार्टियों को भूख लगी। परंतु यहां पर कल्चर संस्कार देखिए कि दोनों को भूख लगी है लेकिन दोनों एक दूसरे की भूख के विषय में चिंतित हैं। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल सखाओं के भूख के विषय में चिंतित हैं और ग्वाल सखा भगवान श्री कृष्ण के भूख के विषय में चिंतित हैं। और दोनों जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए भोजन नहीं मांगेंगे। जैसे कि सुदामा और उनकी जो पत्नी, इन दोनों में भी इसी प्रकार का आदान प्रदान हुआ कि सुदामा इतने निर्धन, इतने गरीब, तो उनकी पत्नी ने जब देखा कि मेरे पति इतने गरीब और इनके सखा हैं द्वारकाधीश कृष्ण, और सुदामा ने देखा कि मैं पति हूं, पति का अर्थ मेंटेनर, कि मैं क्या अपने पत्नी को दे पा रहा हूं, कैसे मैं मेंटेन कर पा रहा हूं। तो इसलिए सुदामा की पत्नी, हालांकि स्वयं उसकी भी दशा ठीक नहीं थी, परंतु अपने पति की दशा ठीक करने के लिए कहती है कि मेरे लिए जाकर कुछ मांगो। तो यहां अब ये ग्वाल सखा ये भी भगवान श्री कृष्ण के पास आ रहे हैं, जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। तो ये ग्वाल सखा ये भी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण हमारे भोजन का प्रयोजन करेंगे तो उत्कृष्ट करेंगे, स्वयं के लिए तो वो केले के छिलके भी खा लेते हैं, परंतु हमारे लिए भगवान उत्कृष्ट भोजन का प्रयोजन करेंगे और हमारे द्वारा भगवान को भी अच्छा भोजन मिलेगा खाने के लिए। तो मेन उनका प्रयोजन क्या था कि इनको मिलना चाहिए राजभोग, राजभोग इनको मिलना चाहिए, परंतु ये इतने नम्र हैं कि ये नहीं अपने लिए राजभोग मांगेंगे, तो चलो हम अपने लिए राजभोग मांग लेते हैं। हमारा कई बार उल्टा होता है, हम स्वयं के लिए राजभोग चाहते हैं इसलिए भगवान को अच्छा अच्छा पका पका के खिलाते हैं, हमारी स्थिति उल्टी होती। जानते हैं कि मदन गोपाल जी बहुत कृपालु हैं, अब तक तो आंखों से ही खा रहे हैं, मुंह में डालना शुरू कर दे तो फिर टेंशन में आ जाएंगे हम। तो अब यहां भगवान श्री कृष्ण ये भी सोच रहे हैं कि भाई ये ग्वाल सखा अपने बारे में या स्वयं भूखे हैं, कुछ मांग रहे हैं, चलो मैं भी इनको ये न लगे कि भाई कि क्या इतने ऐसा टाइम हो गया और भूख लग रही तुमको। अब देखिए भगवान कितने रिफाइंड सेंसिटिव हैं, तो भगवान ने कहा मैं भी बोलता हूं कि मुझे भी भूख लगी, तो फिर उनको भी तसल्ली होगी कि हाँ। तो भगवान भी ग्वाल सखाओं को बोलने लगे, हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो ये पूरी जो कथा है याज्ञिक ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों का उद्धार, इसके अंदर 8 शिक्षाएं हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे पहली 2 शिक्षा से। तो पहली शिक्षा या फर्स्ट लेसन भगवान ये सिखा रहे हैं कि जब भगवान डिमांड करते हैं, यहां पर भगवान डिमांड कर रहे हैं ना कि मुझे भूख लगी लाओ कुछ, सो व्हेन कृष्णा डिमांड्स ही नेवर डिमांड्स फॉर हिमसेल्फ, ये समझ लेना। क्यों? क्योंकि वो आत्माराम है, कोई जरूरत नहीं है उनको कुछ भी डिमांड करने की। द फर्स्ट लेसन विच वी लर्न फ्रॉम दिस पास्ट टाइम इज व्हेन कृष्णा डिमांड्स ही नेवर डिमांड्स फॉर हिमसेल्फ। अब कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई दिखता तो नहीं, इतने सारे श्लोकों में आपके भगवान श्री कृष्ण इतने डिमांडिंग दिखते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में लो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, माम नमस्कार, सब माम माम, कितनी बार मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण आओ, मेरा कीर्तन करो। तो भैया ये डिमांडिंग नहीं तो क्या है, क्या रह गया इसके अलावा? आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ही एकमेव ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके अंदर सारे विरोधाभास रिजॉल्व होते हैं, ऑल पैराडॉक्सेस कैन बी रिजॉल्व्ड Only in Krishna, no one else. हमारे अंदर विरोधाभास बना रहेगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण के अंदर, अब देखिए ये एक जो क्वालिटी बाहर से दिखती है भगवान की डिमांडिंग है ना, भगवत गीता में ऐसे डिमांडिंग श्लोक भगवान ने कहे हैं सरेंडर के विषय में, बाकी इत्यादि के विषय में। तो अगर ये पहला पैराडॉक्स लें, कृष्णा इज डिमांडिंग येट सेल्फलेस, साइमल्टेनियसली कृष्णा इज डिमांडिंग एंड सेल्फलेस। तो एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे। जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष का जड़ है, वृक्ष का जड़ जब अपने आप के लिए पानी मांगता है तो डिमांडिंग लग रहा है ना। When the root of a tree is demanding water for itself, it appears to be selfish. But no, it is an act of pure selflessness. परम निस्वार्थ की ये भावना है उस वृक्ष के जड़ की, कि वो पानी तो अपने ऊपर डालने के लिए कह रहा है, लेकिन वो पानी पहुंचाता कहां तक है? सारी टहनियों, पत्तों, फूल, फल इत्यादि तक, सब पानी उनके लिए होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना भी वृक्ष के मूल से की गई है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तद स्कंद भुजोपशाखा। तो यहां पर यह पहला पैराडॉक्स जो हम देख रहे हैं, कृष्णा इज डिमांडिंग येट सेल्फलेस। तो जब भगवान ये डिमांड कर रहे हैं कि बद्ध जीव मेरे शरण में आए, तो क्या भगवान का भला हम कर रहे हैं उसके द्वारा? नहीं, हमारा भला हो रहा है। भगवान हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा भला भगवान की शरणागति में ही छिपा है। अनदर पैराडॉक्स, कृष्णा इज अ सुप्रीम कंट्रोलर येट कंट्रोल्ड। परम नियंता है, दामोदर लीला में देखो, परम नियंता कैदी की तरह बंधे हुए हैं। एक और पैराडॉक्स, तो उसको कैसे समझेंगे हम? प्रेम का बंधन है फिर वो। कृष्णा इज सुप्रीमली नॉलेजेबल, येट ही डजंट नो वॉट इज द लेवल ऑफ राधा रानी'स भक्ति फॉर हिम। सो ही सुप्रीमली नॉलेजेबल येट इग्नोरेंट अबाउट श्रीमती राधा रानी एंड इग्नोरेंट अबाउट हिज ओन ग्लोरीज। एक और पैराडॉक्स, कृष्णा इज सुप्रीमली पावरफुल येट ही सुप्रीमली डेलिकेट। अब गोवर्धन लीला में हम देखेंगे कि भगवान ने अपनी ऐसी शक्ति, प्रचुर शक्ति दिखाई कि अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर भगवान ने इतना विशाल पर्वत धारण किया, और वही भगवान की कोमलता के विषय में कहा गया है कि यदि एक कमल की पंखुड़ू भी भगवान को स्पर्श कर चली जाती तो वो जगह भगवान वहां पर एक निशान पड़ जाता। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है? संस्कृत में बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के विषय में, वज्रादपि कठोर और कुसुमादपि कोमल। वज्रादपि कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर भगवान का शरीर बन सकता है, है, और कुसुमादपि कोमल। इसलिए कवि कर्णपुर वो एक बहुत सुंदर तरीके से इसका वृत्तांत देखते हैं कि भगवान की जो हथेली है, जब खुली हथेली भगवान अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद के रूप में रखते हैं तो वो कुसुमादपि कोमल की तरह होती। वही हथेली को जब भगवान बंद कर मुट्ठी बनाते हैं तो वज्रादपि कठोर, जैसे कि केशी, केशी जो राक्षस आया, भगवान ने अपनी मुट्ठी उसके मुंह में डालकर उसको इस प्रकार से मारा। कंस को भी घूसा मार मार कर। तो वही अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम हमारे कार्यों से भगवान की हथेली बंद देखना चाहते हैं या खुला देखना चाहते हैं। हथेली वही है, खुल जाएगी तो कुसुमादपि कोमल, बंद हो जाएगी तो वज्रादपि कठोर। मुकुंद माला स्तोत्र में बहुत सुंदर एक श्लोक में ये विरोधाभास के विषय में महाराज कुलशेखर कहते हैं, जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम्, जयति जयति वृष्णी वंशः प्रदीपः, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशः मुकुंदः। तो एक एक लाइन अगर हम देखें इसमें, पहली लाइन में कहते हैं जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम, कि जयकार हो देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का। तो अब देवकी नंदन मतलब किसी माता के नंदन बने, पुत्र बने। तो हो सकता है कोई कहे कि भाई तो मैं भी तो किसी माता का पुत्र हूं, तो क्या फर्क है हा? तो ये देवकी पुत्र हैं, मैं अपने माता का पुत्र हूं, तो एक हुए ना। तो तुरंत महाराज कुलशेखर कहते हैं नहीं, जयति जयति देवकी देवक देवनंदनोयम वृष्णि वंश प्रदीप, वो अपने वृष्णि वंश के प्रदीप बने साथ साथ। साधारण वो संतान नहीं थे, उस पूरे वृष्णि वंश के वो प्रदीप थे। फिर आगे वो कहते हैं जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, और उनके अंग ऐसे कोमल, परंतु उसके साथ साथ पूरी पृथ्वी का भार उठाकर नाश करने के लिए वो शक्ति लेकर आए। तो यहां पर भगवान जब बोल रहे हैं, डिमांडिंग बन रहे हैं, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ, मुझे भूख लगी है, तो उसके अंदर भगवान का निस्वार्थ भाव। गोप सखागण भी जब अपने विषय में पूछ रहे हैं तो उनका भी निस्वार्थ भाव। श्रील प्रभुपाद इतने डिमांडिंग थे वो, कि अपने शिष्यों को ऐसे ऐसे जगहों पर भेजते थे कि उनको लगता था कि वो कभी सपने में भी नहीं सोचते कि अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति उसको पाकिस्तान या चाइना जाकर, और वो भी धर्म की बातें बतानी पड़ेगी उनको। वो तो कभी घूमने के लिए भी नहीं जाते ऐसे देशों में, पिकनिक मनाने में नहीं जाते ये लोग। अफ्रीका, ब्रह्मानंद प्रभु इत्यादि इनको अफ्रीका भेजा, सोचो वहां पर हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जो इतना डिमांडिंग दिखते थे, उसके पीछे प्रभुपाद का भाव क्या था कि जो इनके अंदर ये इतना रजोगुण है, उसको ये न के न प्रकार भगवान की सेवा में यदि मैं नहीं लगाऊंगा तो फिर वो उस जीने के समान है, गलत कार्यों में लगेंगे। तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि एक है किसी का व्यवहार और एक है किसी का इंटेंशन। इवन इफ कृष्णा इज बिहेविंग इन अ डिमांडिंग मैनर बट हिज इंटेंशन इज सेल्फलेस। So we learn from this lesson another sub lesson, seeing intentions beyond behavior, which is one of the most matured Vaishnava quality, which is very rare, becoming extinct. Kaun si quality? Seeing the other person's intentions beyond behavior. भौतिक संसार में क्या होता है, इंटेंशंस की कोई परवाह नहीं करता, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। पार्टियों में जाओ, हाँ एकदम प्रेम से बातें करेंगे, मन में गालियां दे रहे होंगे एक दूसरे को, लेकिन बिहेवियर कैसा होगा, एकदम कल्चर्ड बिहेवियर दिखाएंगे। हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, मिसिंग यू, Where were you? I was thinking about you. कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा उनके बारे में। तो ये सब बाहर से एकदम, जिसको बोल बच्चन बोलते हैं आजकल, एकदम बोलने में मधुर, परंतु मन में कौन सी भाषा चल रही है वो बोल भी नहीं सकते कौन सी भाषा चल रही है मन। तो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी हम ये लेसन से सीखते हैं, सीखना चाहिए, सीइंग द अदर पर्सन्स इंटेंशंस बियॉन्ड बिहेवियर। जैसे अम्बरीश महाराज और दुर्वास मुनि, दुर्वास मुनि का बिहेवियर क्या रहा अम्बरीश महाराज के प्रति हम सब जानते हैं कि एक तो अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा, दुर्वास मुनि उनको ये एक नाम मिला है दुर्वास, बहुत ही उनको एक कल्चर्ड तरीके से लोग दुर्वास बुलाते थे क्योंकि वास्तविक रूप में वो कोई कपड़े पहनते ही नहीं थे, तो उनको ये बोल देना कि आप नग्न हैं बहुत डेंजरस हो जाता, वो भी दुर्वास मुनि को, इसलिए दुर्वास, दुर्वास का मतलब निगार्डली ड्रेस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कम पहने हुए कपड़े। तो ऐसे ये दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज जैसे बड़े न केवल वो राजा बल्कि राज ऋषि, भगवान के ऐसे अनन्य भक्त, और हम सब जानते हैं कि वो एकादशी का व्रत कर रहे थे अम्बरीश महाराज, और फिर व्रत जब तोड़ने का टाइम आया दुर्वास मुनि वहां पर पहुंचे बिना नोटिस, तो अम्बरीश महाराज ने तुरंत उनका स्वागत किया, और अम्बरीश महाराज ने जो कि जनहित के लिए वो उपवास रखा था, हम जानते हैं कथा, दुर्वास मुनि स्नान करने गए और यहां पर समय बीतता जा रहा था, तो अम्बरीश महाराज ने जनहित के कल्याण के लिए केवल थोड़ा सा जल लिया। अब हम यदि अपने आप को अम्बरीश महाराज की जगह रखें कि हम निर्जल उपवास कर रहे हैं और कोई आ जाए फास्ट ब्रेकिंग के समय, और हमसे कहे कि मुझे खिलाने से पहले पीना मत, एक बूंद भी पीना मत, देखना, तो क्या व्यवहार हमारा होगा, हम क्या सोचेंगे उस व्यक्ति के विषय में। अभी आना था, यही समय मिला, और अगर वो आ भी जाए तो उसके सामने सब जितना नींबू पानी वगैरह पी पा के बोला अभी क्या चाहिए, आप भी ले लो थोड़ा सा। तो यहां दुर्वास मुनि इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने एक बाल उनकी जटा से निकालकर वहां पर एक राक्षस पैदा किया इनको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। अब अम्बरीश महाराज वो ऐसे भक्त भगवान के कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज को दे रखा था, वो जानते थे ऐसे आते रहेंगे बहुत से, बोलते ना जस्ट इन केस, तो ये काम आएगा। फिर भी अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन को आह्वान नहीं किया, था उनके पास, बिल्कुल गलती नहीं थी अम्बरीश महाराज की, लेकिन अम्बरीश महाराज ने दुर्वास मुनि के ऐसे दुर्व्यवहार के पीछे उनका इंटेंशंस देखा, और एक साल तक जब दुर्वास मुनि यहां वहां अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ तक पहुंचे, पूरे एक साल तक भाग रहे थे सुदर्शन से बचते हुए, अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े हुए उन्होंने एक साल तक वापस फास्टिंग किया कि अभी तक दुर्वास मुनि पता नहीं उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं। अब सोचो सुदर्शन पीछे लगा हुआ है, खाने पीने की सुध होगी, ऐसा नहीं तो दुर्वास मुनि रास्ते में सुदर्शन को बोले चलो बैठ के ढाबे ढाबे में कुछ खा। तो अम्बरीश महाराज स्वयं इतना फास्टिंग करने के पश्चात अब और वो चिंता केवल दुर्वास मुनि की कर रहे थे। तो वो क्या देख रहे थे कि दुर्वास मुनि मुझे कुछ सही सलाह दिए कि जो मैंने गलत किया, अपने अतिथि को खिलाने से पहले मैंने कुछ ले लिया। तो ऐसे दुर्व्यवहार को भी नजरअंदाज करते हुए अम्बरीश महाराज ने उनके इंटेंशंस को देखा। यह है पराकाष्ठा समझने की कि हाउ टू सी बियॉन्ड वन्स बिहेवियर द अदर पर्सन्स इंटेंशंस। नलकुवर मणिग्रीव। अब नलकुवर मणिग्रीव और नारद मुनि के बीच में हुआ क्या? नारद मुनि क्रोधित, परंतु नारद मुनि के उस दुर्व्यवहार के पीछे उनका अनुग्रह था नलकुवर मणिग्रीव के प्रति, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने देखा। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि के विषय में यह नहीं कहते कि नारद मुनि ने क्रोध में शाप दिया इनको, नहीं, तस्य अनुग्रहार्थाय, कि नारद मुनि का अनुग्रह अर्थात उनकी कृपा नलकुवर मणिग्रीव को वृक्ष बना दिया कृपा के कारण। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रगत भक्त वो नारद मुनि के तथा कथित दुर्व्यवहार के पीछे उनके इंटेंशंस को देखे। महाभारत से एक और उदाहरण, दुर्योधन। दुर्योधन का एकदम प्रेममय व्यवहार कृष्ण के प्रति, 56 भोग खिलाने की चेष्टा किए दुर्योधन, और दुशासन को कहा, क्योंकि दुशासन का महल सबसे ऐश्वर्यशाली महल था, दुर्योधन से भी ज्यादा, छोटा था इसलिए उसका महल ज्यादा ऐश्वर्यशाली। तो दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि कृष्ण को तुम्हारे महल में 56 भोग खिलाएंगे। तो बाहर से क्या लग रहा है, दुर्योधन राजभोग 56 भोग वो भी सबसे ऐश्वर्यशाली महल में भगवान को खिलाना चाह रहा है, कितना अच्छा व्यवहार है ना। लेकिन उसके पीछे इंटेंशन क्या था? चापलूसी। तो भगवान जान गए। तो ये सब उदाहरणों से हम क्या समझ रहे हैं कि केवल किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से हमें कंक्लूजन पर नहीं आ जाना चाहिए कि यही इसका इंटेंशन है। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है हमें हमारी साधना भक्ति में, भक्तों के साथ जो हम रह रहे हैं। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, वी एक्सपेक्ट अदर्स टू अंडरस्टैंड अवर इंटेंशंस। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, भैया क्लास में सुना नहीं, तो मेरे इंटेंशन देखो ना, बिहेवियर को क्यों देख रहे हो। सो वाइल वी आर मिसबिहेविंग लाइक एनीथिंग विद डिवोटीज, वी एक्सपेक्ट दैट दे शुड अंडरस्टैंड अवर इंटेंशंस। एंड व्हेन इट कम्स टू आर एग्जाम्पल, वी एक्सपेक्ट यू नो दैट यस द अदर पर्सन शुड बिहेव प्रॉपरली, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड हिज इंटेंशन। आपको समझ रहा है ये हम लोग कहां अटक जाते हैं, गाड़ी कहां अटकती है हमारी। अब देखिए, साधारणतः कलयुग में, यहां तक कि भक्तों के समुदाय में भी देखा जाता है, अगर किसी एक व्यक्ति ने हमारे साथ कभी किसी जमाने में दुर्व्यवहार किया हो, हम उसका परमानेंट इंप्रेशन बना के रखते हैं, है ना, परमानेंट इंप्रेशन बना के रखते हैं कि उस समय 20 साल पहले ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया था। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, कि किसी ने कभी किसी योनि में किसी जन्म में कभी एक बार भगवान की थोड़ी भी भक्ति कर ली, भगवान उसका इंप्रेशन बना के रखते, एकदम विपरीत। भगवान उसका परमानेंट इंप्रेशन बना के रखते कि इसने एक बार करोड़ों जन्म पहले कभी तो एक बार इसने मेरा नाम लिया था, या मुझसे आकर्षित हुआ था, या मेरी तरफ इसने देखा था। भगवान उसको कभी भूलते नहीं। और हम लोग कौन है? करोड़ों जन्म पहले जब किसी ने कुछ हमारे साथ गलत किया उसको हम भूलते नहीं, ने ऐसा किया था। तो हम भगवान से क्या सीखते, सीखना चाहिए हमें कि चाहे हम भक्तों के संग में रह रहे हो, किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार भी क्यों नहीं किया हो, हमें क्या देखना है कि ये व्यक्ति कम से कम तिलक लगाए हुए, कंठीमाला पहने हुए, इसने जब ये कृष्ण भक्ति में आया तो अच्छे इंटेंशन से ही आया होगा ना। अगर ये दीक्षित है, गुरु की शरण ग्रहण किया है, तो इसके अंदर कुछ तो सिंसियरिटी होगी कभी ना कभी, अभी नहीं होगी, हो सकता है, बट एटलीस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम समवेयर सम डे ही हैड सम सिंसियरिटी बिकॉज ऑफ विच ही केम टू कृष्णा। व्हाई नॉट फोकस ऑन दैट, विच मीन्स ही हैज द पोटेंशियल टू अगेन गेट बैक टू दैट सिंसियरिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट है, ये है क्या? दिस इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर दोज पीपल हु हैव गुड इंटेंशंस। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इंटेंशंस को बहुत अच्छा रखें और बिहेवियर जैसा भी हो, अगले व्यक्ति को समझना चाहिए, अभी उसका प्रॉब्लम है। नहीं, तो यहां भगवान जब डिमांडिंग लग रहे हैं, ऐसा व्यवहार भगवान का लग रहा है, तो उसके पीछे भगवान का एकदम सेल्फलेस इंटेंशन है। तो ये पहला लेसन भगवान का डिमांडिंग नेचर से हम सीखते हैं। अब हुआ क्या कि जब इन ग्वाल सखाओं को भगवान ने भेजा कि जाओ पासी में अक्रूर घाट के पास यमुना के तट पर ये ब्राह्मण अंगिरास यज्ञ में लगे हुए हैं, जाकर इनसे भिक्षा मांगो और बलराम जी के नाम से मांगना, क्योंकि बलराम जी वर्ण में मुझसे ऊंचे हैं, तो उनके नाम से मांगना, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये जो ब्राह्मण हैं ये जातिवाद में विश्वास रखते हैं। भगवान ये भी जानते थे कि नहीं देने वाले हैं फिर भी, परंतु भगवान यहां पर हमारे लिए एक सिद्धांत या शिक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दूसरी शिक्षा, सेकंड लेसन, ग्वाल सखा गए, हम सब जानते हैं, दुत्कार कर भगा दिया इन ब्राह्मणों ने, दूर हटो, क्या हम इतना हम विशाल यज्ञ कर रहे हैं और ये मस्ती करते हुए धूल में अपने आप को सने हुए ये यहां पर आए, गंदा सब कर रहे हैं, दूर हटो, भगा दिया इसे। तो भगवान यहां पर सिखा क्या रहे हैं, नेवर लूज फोकस ऑन द पर्पज ऑफ योर सर्विस, कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है अंततः। और कितनी बार हम देखते हैं हमारे बीच में सेवाएं कर रहे हैं, सभी सेवाएं कर रहे हैं और प्रयोजन भूल जाते हैं उस सेवा का, और यहां तक कि भगवान की सेवा करते करते आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाते हैं। सोचिए कि जहां पर हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम में अष्टविकार प्राप्त होना चाहिए वो तो दूर, कि वो सेवा का प्रयोजन तो वो तो कहां दूर फेंक देते हम और लड़ना प्रारंभ कर देते। जैसे कि अगर एक उदाहरण से हम समझाएं, जो फुटबॉल का गेम होता है, तो फुटबॉल के गेम में आप देखो जो खिलाड़ी होता है उसका प्रयोजन क्या है, उसको क्या बताया जाता है कि ये बॉल है, ये गोल पोस्ट है, ये बॉल इस गोल पोस्ट में डालना है। जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कितना ये लोग प्रशिक्षण लेते हैं कि कैसे कितने 11 प्लेयर्स के बीच में से उसको ड्रिबल करके लेके जाना पड़ता है उसे। तो अब अगर हम ये फुटबॉल के गेम के इस नियम को देखें तो उसको सिखाया जाता है कि कैसे सामने अगर प्रतिद्वंद्वी 3 खड़े हैं, ओपोनेंट 3 खड़े हैं, तो कैसे तीनों के बीच में से ड्रिबल करके बॉल को ले जाना। अब वो अगर केवल उसी में पूरा मशगूल हो जाए ड्रिबल करने में, क्योंकि इन तीनों से बचना है कैसे, तो वहीं पे उनको टच नहीं करने दे रहा है तीनों को बॉल, तो जो टीम का कैप्टन है वो तो ठीक है भाई, आगे ले चल उसको, नहीं नहीं टच नहीं करने दूंगा मैं, तो क्या फायदा, वो कितना भी आर्टिस्टिक तरीके से ड्रिबल करे अगर गोल नहीं मार रहा है तो क्या फायदा। What is the use of his artistic dribbling if he is not taking the ball in the goal post? और दूसरा प्लेयर है उसको कुछ वो आर्टिस्टिक पता नहीं, कई फुटबॉल प्लेयर बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, वो अपने सर पे बॉल को ऐसे बाउंस करा सकते हैं 10 बार, अंगूठे पैर के अंगूठे के ऊपर बॉल को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है भाई वो सब तुम्हारा कलाकारी होगी, लेकिन गोल मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो वो क्वेश्चन है। तो मानो सबके बीच में ये सब कुछ करतब दिखा रहा है, कैप्टन बोलेगा गोल मार गोल मार, बोले नहीं देखो मेरा करतब देखो। तो कई बार हम भी भक्ति में अपना करतब दिखाते हैं, जैसे प्रभुपाद के सर्वेंट श्रुत कीर्ति प्रभु वो अपने पुस्तक में लिखते हैं कि वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं तो श्रुत कीर्ति प्रभु चामर ढुला रहे थे। आप देखो कई बार जैसे ही पुजारी के हाथ में चामर आता है तो एकदम वो अलग ही मूड में चला जाता है, क्योंकि उसको कितने अनगिनत तरीके से उसमें कलाकारी पुजारी दिखा सकते हैं चामर ढुलाने में। तो चामर ढुलाने का प्रयोजन क्या है, जो मक्खी यहां वहां घूम रही है उसको भगाना। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो अब प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं यहां पर श्रुत कीर्ति प्रभु, अब प्रभुपाद ने बोला नहीं था, ये स्वयं चामर लेकर आए कि मैं कुछ सेवा करता हूं, तो चामर ढुलाने लगे। तो प्रभुपाद इधर बैठे हैं तो और वो एकदम स्टाइल में 3 बार यहां ऊपर लेके, फिर 3 बार ऐसे नीचे ले जाके, फिर थोड़ा इधर से ऐसे, फिर थोड़ा इधर से ऐसे, सब लोग देख रहे हैं प्रभुपाद का प्रवचन छोड़ के इनको देख रहे हैं कि ऐसी स्टाइल में चामर तो कभी हमने देखा नहीं किसी ने ढुलाते हुए, और प्रभुपाद के नाक पर एक मक्खी बैठी है। तो प्रभुपाद उनकी तरफ देखे एक बार, तो वो अपने दुनिया में, दूसरी बार प्रभुपाद देखे, फिर प्रभुपाद ने माइक्रोफोन में कहा Get someone up there with some intelligence. तुरंत दूसरे भक्त वहां पर कूद कर उन्होंने चामर लिया उनसे। और कई बार क्या होता है, कौन से भक्त कूदते हैं जिनका स्किन इनके साथ दमता नहीं, वो उनके अंदर अष्टविकार हो जाता है कि इसी घड़ी की प्रतीक्षा में मैं था। और फिर शुद्ध कीर्ति प्रभु को समझ में आया तो आके बैठ गया, ऊपर भी नहीं देख पा रहे, नीचे मुंह कर कर, तो बगल में उनके भक्त बैठा, मर्सी हाँ तो मन में सोच रहे थे बेटा तेरे साथ होगा ना तब मैं पूछूंगा मर्सी है क्या। जैसे मुझे याद है एक राधा गोपीनाथ के ब्रह्मचारी, उस समय बहुत साल पहले की बात है, तो भक्ति चारू महाराज क्लास दे रहे थे और राधानाथ महाराज वो आकर बैठे ऑडियंस में क्लास सुनने के लिए, तो उनके बगल में ये ब्रह्मचारी बैठे हुए थे। अब जैसे राधानाथ महाराज आकर बैठ गए तो ये थोड़ा टेंशन में आ गए कि महाराज बगल में बैठे हैं, तो भक्ति चारू महाराज राधा माधव शुरू किए, तो महाराज ने ये ब्रह्मचारी को ऐसे थपथपाया उनके पैरों पर, और ज्यादा एकदम करंट सा लग गया। फिर महाराज ने बुलाया ऐसे और इनके कान में कुछ कहा, ये खड़ा हो गए, खड़े होके पीछे जाके खड़े हो गए, महाराज के पीछे जाके खड़े हो गए। तो महाराज दो तीन मिनट देखे, फिर पीछे मुड़ के देखे, ऐसे किया कि क्या हुआ, मतलब खड़े क्यों होंगे पीछे जाके। तो अब ये और कंफ्यूज हो गए कि महाराज क्या बोलना चाह रहे हैं, तो डीटी रूम में गए, पीछे से डीटी रूम में चले गए, वहां से चामर लेके आए और भक्ति चारू महाराज को चामर करने लग गए। सभी डिवोटीज देख रहे हैं, अभी ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कोई सन्यासी आए और उनको चामर कोई कर रहा है, तो भक्ति चारू महाराज को चामर करने लगे, सारे डिवोटीज देख रही है क्या अचानक कर रहा है। तो एक ने पूछा क्या कर रहा है, बोला महाराज बोले, महाराज भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, और भक्ति चारू महाराज राधा माधव देखते समय ये क्या हो रहा है, ये मेरे को क्यों चामर कर रहा है, मेरी व्यास पूजा भी नहीं है। तो फिर महाराज ने एक डिवोटी को भेजा, बोला उसको बुलाओ यहाँ, क्या कर रहा है वो। तो फिर महाराज ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो वो बोला महाराज आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वर यू सेइंग। तो महाराज ने कान में जो बोला उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो अपने मन में सोच रहे शायद महाराज मेरे को खड़े रहने के लिए बोल रहे हैं, मैं डुलकी मार रहा हूँ, तो पहले खड़े हो गए, फिर महाराज वापस पीछे मुड़ के देखे, तो उनको लगा कि शायद महाराज बोल रहे हैं कि इनके लिए चामर ढुलाओ। तो महाराज बोले व्हाई डिडंट यू आस्क मी दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड। महाराज बोले आई वॉज टेलिंग दैट देर आर सम डिवोटी दे आर फेसिंग देयर बैक टू प्रभुपाद, आस्क देम नॉट टू डू दैट। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बोला जाता है उसका प्रयोजन कुछ और होता है और अलग ही कुछ हम लोग करना शुरू करते हैं। जैसे एक और घटना प्रभुपाद के ही पास टाइम्स की है, एक बहुत ही विशेष, ये वहां के बहुत मेयर कोई थे जिनको प्रभुपाद ने पर्सनली इनवाइट किया था प्रसादम के लिए, अमेरिका की बात है, और प्रभुपाद ने अपने सर्वेंट को कहा था कि मैं स्वयं उनके लिए प्रसाद बनाऊंगा, तो बाहर खड़े रहो, मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो सर्वेंट को बोल दिया हाँ ठीक है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब एकदम लाइसेंस मिल गया, कोई भी आएगा उसकी हिम्मत प्रभुपाद को डिस्टर्ब करने की, प्रभुपाद ने मेरे को बोला है कि मैं यहां पर खड़ा रह के किसी को भी अंदर नहीं आने दूं। तो हुआ क्या कि वो जो स्पेशल गेस्ट जिनको प्रभुपाद ने बुलाया था वो जल्दी आ गए और वो आके इन्हीं सर्वेंट को पूछा कि कैन आई मीट स्वामी जी, नो वन इज अलाउड टू मीट। स्वामी जी हैज टोल्ड टुडे नो ही इज नॉट मीटिंग एनीवन। रियली ठीक है भाई, वो चले गए। प्रभुपाद फीस्ट वीस्ट बनाए, ऑफरिंग किया, वेट कर रहे हैं आधा घंटा एक घंटा, आए नहीं आए नहीं। फिर फाइनली जो प्रभुपाद को पता लगा कि ये महाशय ने जिनके लिए सब कुछ मैं बना रहा था उन्हीं को भगा दिया। तो होता क्या है कि कई बार हम भी अलग अलग तरीके से ये सेवा वो सेवा इसके अंदर लगे रहते हैं और हम फोकस भूल जाते हैं कि क्या हम जिसके लिए ये सेवा कर रहे हैं क्या उनको हम प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा है इसके संदर्भ में। एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी जिसका नियम था कि केवल अपने पति को भोजन खिलाने के पश्चात अपने पति का जूठा खाती, उसका नियम था ये। अब हुआ क्या कि पति को कुछ दिनों के लिए व्यवसाय के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, तो अब समस्या कि ये पति तो नहीं रहेंगे, तीन चार दिन ये कैसे खाएगी जो इसका नियम रेगुलेशन था। तो पति ने कहा चिंता मत करो, पति ने अपनी तस्वीर दे दी कि ये मेरी तस्वीर को खिला दो और फिर खा लेना। तो अब उसने बहुत दृढ़ता से उस नियम का पालन किया, तस्वीर को खिलाना है। तो अब हुआ क्या कि रोज वो तस्वीर को ऑफर करती, अपने पति की तस्वीर को, और फिर खाती। तो पति एक दिन जल्दी आ गए, चिंता हो रही थी पता नहीं पत्नी ठीक से खा रही नहीं होगी। तो पति जल्दी आ गए तो दरवाजे पे वो खटखट कर रहे हैं और यहां पर इसका ऑफरिंग चल रहा है, ये खोल नहीं रही क्योंकि इसका दृढ़ नियम। तो पति को समझ गया कि शायद ऑफरिंग का टाइम हो गया इसलिए नहीं खोल रही। तो पति ने कहा अरे मैं ही हूं, मैं आ गया तुम्हारा पति। तो जो भी है मेरे को यहां पे तस्वीर को ऑफर करना है। बोला अरे मैं आ गया, तस्वीर क्या, छोड़ो तस्वीर को, मैं आ गया। नहीं, बाहर खड़े रहो, तस्वीर को ऑफर होगा। तो क्या फायदा ऐसे नियम का कि जहां पर उसका प्रयोजन क्या था वो ही भूल गए। तो हम कितनी बार ये सुनते हैं कि कितने अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। एक और सुंदर श्लोक में महाराज कुलशेखर उन्होंने प्रार्थना की है मुकुंद माला स्तोत्र में, इसी संदर्भ में वो कहते हैं आमनाया भ्यसनान्यरण्य रुदितम वेद वृतान्यन्वहम मेदश्चेद फलानि पूर्त विधय सर्वं हुतं भस्मनि तीर्थानाम अवगाहनानि च गज स्नानं विना यत्पदं द्वन्द्वां भोरुह संस्मृतिं विजयते देवसनारायण। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें वो विभिन्न जितने रीति रिवाज रिचुअल्स को जो फॉलो करते हैं उनके विषय में वो कहते हैं कि कैसे अगर वो पर्पज को भूल जाएं तो वो क्या हो जाता है। सबसे पहले वो कहते हैं आमनाय अभ्यसानानी। आमनाय मतलब वेद। तो वेदों का जो बहुत अध्ययन करते हैं परंतु उसका प्रयोजन भूल जाते हैं कि वेद अध्ययन का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं कि वो वेद अध्ययन बिना प्रयोजन को जाने, रीडिंग ऑफ दो स्क्रिप्चर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पज ऑफ रीडिंग दो स्क्रिप्चर्स इज लाइक रुदित अरण्य रुदितम, कि जंगल में कोई क्रदन रुंदन कर रहा है, रो रहा है, उसका शास्त्र अध्ययन उस प्रकार से है, क्राइंग इन द विल्डरनेस ऑफ फॉरेस्ट। फिर आगे वो कहते हैं वेद व्रत। यदि किसी वेद व्रत को वो फॉलो कर रहा है, तप को फॉलो कर रहा है, उपवास कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, नवरात्र चल रहा है, प्रयोजन भूल जाता है लेकिन, तो उसका जो ये तप उपवास यदि बिना प्रयोजन के वो कर रहा है तो क्या होगा उसके लिए, मेद चेद। मेद कहते हैं चर्बी होती ना शरीर की, केवल चर्बी कम होगी केवल उसकी वो फास्टिंग के वजह से, और कुछ नहीं होगा। फिर आगे वो कहते हैं कि कोई यज्ञ कर रहा है, सर्वम हुतम, कोई यज्ञ कर रहा है परंतु प्रयोजन को भूल जाता है, तो वो क्या कर रहा है, सर्वम हुतम भस्मनी, कि केवल वो भस्मों के ऊपर आहुति डाल रहा है, कुछ अग्नि वग्नि तो है नहीं, भस्म के ऊपर आहुति डाल रहा है। तीर्था नाम अवगाहना नीच गज, तीर्थों में जाके डुबकी लगा रहा है, स्नान कर रहा है, लौट रहा है, पोट रहा है, लेकिन प्रयोजन को नहीं जान रहा, तो वो गज स्नान के समान है। और इसके विपरीत यदि कोई एक भगवान का शुद्ध भक्त द्वंद्वाम भोरुह, कि वो अपने दोनों हाथ को लेकर भगवान नारायण के सामने सही भावना से केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता है, समस्मृति विजयते, ये जो समस्मृति है, जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे विजय प्राप्त कर लेता है। क्या करने से, केवल दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध भावना से भगवान श्री नारायण की जब प्रार्थना करता है, क्योंकि वो प्रयोजन जान रहा है। तो उसी प्रकार से हम भक्तों के संग में सबसे पहले प्रयोजन को पहचान लें। तो मैं जब ये पॉइंट के विषय में सोच रहा था, इस लेसन के विषय में सोच रहा था, तो एक दूसरे दृष्टिकोण से, अगर हम ऑपोजिट दृष्टिकोण से देखें, तो माया देवी या कलयुग जिसके अंदर हम हैं, कलयुग के प्रयोजन को भी हमें पहचानना चाहिए। एक है भगवान कृष्ण के प्रयोजन को पहचानना और एक है कलयुग के प्रयोजन को पहचानना, जो कि भगवान कृष्ण के प्रयोजन को पहचानने से ज्यादा जरूरी और पहले है हमारे लिए। टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ कलयुग, क्या पर्पज है, क्वारल हिपोक्रेसी, कलह और दंभ, ध्यान में रखना चाहिए। चाहे हम कितने भी अलग अलग प्रकार के साधना के कार्य में लगे हों, भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन, अर्च विग्रह की सेवा, इतने सारे उत्सव, परंतु यदि जो कलयुग का प्रयोजन है उसको नहीं पहचानेंगे, तो ऐसे शुद्ध कार्यों के बीच में भी कलयुग अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। और होता है, भक्तों के बीच में हम देखते हैं कि जब हम कलयुग के प्रयोजन को नहीं जानते तो हम आपस में कलह और दंभ के शिकार बनते हैं। तो कलयुग का एक और प्रयोजन क्या है, एक है क्वारल एंड हिपोक्रेसी, और बहुत बहुत ही निपुणता से कलयुग हमारे भक्तों के समुदाय में भी उसने अपना साम्राज्य जमा लिया है, बहुत निपुणता से। और एक और प्रयोजन कलयुग का है, डिवाइड एंड रूल, सुना होगा आपने, डिवाइड एंड रूल किसने किया था, अंग्रेजों ने जो हमारे साथ किया, डिवाइड एंड रूल। तो अभी आपको हम हमारे भारतीय इतिहास का उदाहरण देंगे, कुछ आंकड़े इसके अंदर चौंकाने वाले होंगे आप लोगों को, परंतु फोकस लूज मत करना कि पॉइंट क्या है। अब अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर शासन किया तो उनकी कोई नीति ये नहीं थी कि वो हमारी भलाई करने के लिए यहां पर आ रहे हैं, सब हम जानते हैं, कोई उनका प्रयोजन नहीं था। इसलिए कलह, कलयुग भी ऐसा ही है, शुरुआत में कलयुग का प्रस्ताव जैसे अंग्रेजों का प्रस्ताव हमारे लिए था। और हम पूरे इतिहास में नहीं जाएंगे, केवल अंत में ब्रिटिशर्स ने क्या दिया हमको हमारी आजादी के समय, जो कि उनका ब्रह्मास्त्र था, जो आज तक हमारे इस भारत देश को पीड़ित रखा है। क्या था वो? पार्टीशन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, ये उनका ब्रह्मास्त्र था जाते जाते जो वो छोड़ के गए, और आज तक हम भुगत रहे ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के विषय। तो कलयुग भी करता क्या है कि यदि हम निकालने का भी प्रयास करें उसको हमारे भक्तों के समुदाय से, तो वो जाते जाते हमारे अंदर फूट पैदा करके जाता है, बंटवारा। तो अंग्रेजों ने किया क्या? अब ये मैंने एक कारण था जब मैं वायुसेना छोड़ा, उसका एक ये कारण था, बहुत से कारण थे, एक ये कारण था कि हमारे एयरफोर्स की लाइब्रेरी में एक मैंने पुस्तक पढ़ी जिसका टाइटल था इंडियाज इंडिपेंडेंस द ग्रेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी। क्या टाइटल था? इंडियाज इंडिपेंडेंस द ग्रेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी। और वो पुस्तक जब मैंने पढ़ी तो मैं विश्वास नहीं कर सका कि क्या मैं ऐसी सरकार की सेवा में लगाऊं। तो ये कारण था कि नहीं, मुझे ऐसे गिरे हुए घटिया लोगों की सेवा नहीं करनी। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस पुस्तक में क्या मैंने पढ़ा। तो उसमें, और ये सब विश्वस्त सूत्रों के द्वारा रिकॉर्डेड, किसी के मनगढ़ंत कोई चीजें नहीं थी। तो उस पुस्तक में बहुत से जो उस जमाने के गांधी जी के सेक्रेटरी, जिनका एक नाम मिस्टर प्यारेलाल, उनके उनके दस्तावेज इत्यादि। तो शुरुआत होती है, पार्टीशन हुआ यहां पर, हम जानते हैं दो व्यक्तियों के वजह से, एक जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान, जिन्ना पाकिस्तान लिए वो, और जवाहरलाल नेहरू भारत हिंदुस्तान। तो आप यदि पता नहीं कितना इनका इतिहास जानते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू ये क्लासमेट थे, कहां? ब्रिटेन के हैरिस कॉलेज में। ब्रिटेन के हैरिस कॉलेज में दोनों क्लासमेट थे, बहुत सालों एक साथ रहे ये। और इन दोनों के नाजायज संबंध उस समय एक महिला के साथ थे जिसका नाम था एडविना। तो उस समय एडविना का विवाह नहीं हुआ था, और आगे चलकर लॉर्ड माउंटबेटन, अगर आपको इतिहास पता है, तो लेडी एडविना माउंटबेटन की पत्नी बनकर आई। वो कभी उसकी पत्नी नहीं थी, बनकर आई थी, वो भेजा गया था उसको। तो नेहरू, जिन्ना और एडविना, इनके नाजायज संबंध थे। और ब्रिटिश की जो खुफिया एजेंसी, उनको पूरा पता लग गया था कि ये सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था इनका जब ये ब्रिटेन में थे। तो उन्होंने एडविना को, जैसे कि हमारे पहले के राजा विषकन्या को भेजते थे, तो एडविना को विषकन्या के रूप में उन्होंने भारत में भेजा। कब भेजा? जब अब कोई आसार नहीं था अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज्य करने का। तो एडविना को माउंटबेटन की पत्नी बनाकर भेजा, शादी कभी नहीं हुई थी उसकी माउंटबेटन के साथ। तो जो लास्ट वो सरकारी अधिकारी था माउंटबेटन, उसको भेजा गया और उसको कहा कि ये एडविना तुम्हारी पत्नी बनकर जाएगी। और विशेष रूप से एडविना को पूरा पट्टी पढ़ाकर कि उसको क्या करना है भारत में जाकर। तो माउंटबेटन ने कहा कि कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं अपने देश के लिए कि स्वांग रचा सकता हूं इसके पति बनने का। तो माउंटबेटन ने कह दिया कि एक ही शर्त पर, मैं कभी इस एडविना के साथ मैं शारीरिक संबंध नहीं रखूंगा। ये माउंटबेटन ने बोल दिया था, उसका पहला शर्त था ये, इसी शर्त पे ये मेरी पत्नी बनेगी। ठीक है, तो अब एडविना जब भारत आई तो उसने फिर से वो कार्यक्रम शुरू किया जो कॉलेज में मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू के साथ किया करती थी। वो फिर से वो कार्यक्रम चालू किया और इस हद तक कि July 3, 1947 उसने सबसे पहले नेहरू के सामने जितने उनके कार्यक्रम के अश्लील चित्र वो दिखा दिए कि भाई देखो मेरे पास ये सारे चित्र हैं हम दोनों के, और यदि तुम इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते तो कल टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर ये आएंगे फोटोज। अब उस समय नेहरू इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल, और यही नहीं एडविना ने यह भी कहा कि आपको जो इतना विश्वासु मानते हैं महात्मा गांधी, सबसे पहले मैं उनको दिखाऊंगी। ये तब फिर नेहरू ने पूछा कि किस पर साइन कराना चाहती हो, तो एग्रीमेंट क्या था, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होना चाहिए, दोनों अलग अलग देश होने चाहिए। तो नेहरू कहे कि भाई मुझे मेरे कांग्रेस वर्किंग पार्टी से तो पूछने दो। बोला अगर आप पूछने गए यहां, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पास जा रहा हूं फोटोज लेके। तो 3 जुलाई 1947 रात के 3 बजे नेहरू ने साइन कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि रात के 3 बजे एडविना के साथ क्या कर रहे थे वो। रात के 3 बजे साइन कर दिया भारत का बंटवारा। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ गया, यहां पर यही एडविना जिन्ना के पास गई और यही ब्लैकमेलिंग जिन्ना को किया इसने कि ये सारी तस्वीरें मेरे पास है तुम्हारी और मेरी, इसे साइन करो। अब ये जो जिन्ना, इन जिन्ना को अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का लीडर बना रखा था। पहले से अंग्रेजों के दिमाग में था, ब्रिटिशर्स के दिमाग में था कि हमको बंटवारा करना है इनका जाते जाते, और उनके दिमाग में यह था कि बंटवारा करने के पश्चात जब आजाद हिंदुस्तान होगा तो उसका पहला प्रधानमंत्री हम केवल नेहरू को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि विंस्टन चर्चिल जो कि ऑपोजिशन लीग का हेड था ब्रिटेन पार्लियामेंट में, और मिस्टर एटली उस समय एक प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह दिया था कि ये नेहरू जो है ये ही इज अ ब्रिटिशर इन डिस्गाइज ऑफ एन इंडियन बॉडी, तो यदि आपको हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान पे भी राज्य करना है तो इसको प्रधानमंत्री बनाओ। तो उनका मेन टारगेट यही था, और उसके प्रतिद्वंद्वी कौन था, जिन्ना। तो जिन्ना को अलग करो, कैसे अलग करो, उसको मुस्लिम लीग का लीडर बनाओ पहले। तो मुस्लिम लीग का लीडर जिन्ना बना, लेकिन वो मुसलमानों का लीडर नहीं बन पाया कभी। कैसे? क्योंकि मुसलमान उसे नफरत करते थे। सबसे पहला कारण, वो सुअर का मांस खाता था जो कि उनके धर्म के विरुद्ध है। दूसरा कारण, वो शराब पीता था, वो भी उनके धर्म के विरुद्ध। तीसरा कारण, वो ब्याज से पैसे उठाता था, वो भी उनके धर्म के विरुद्ध। चौथा कारण, उसके नाजायज संबंध एडविना के साथ, धर्म के विरुद्ध। तो इन 4 कारणों के वजह से जो मुसलमान थे वो नफरत करते थे जिन्ना से। यहां तक कि लाहौर में एक रैली में जब जिन्ना गया तो स्टेज पर उसका मुंह काला कर उसको गधे पर बिठाया मुसलमानों ने। तो यहां जिन्ना को एडविना ने ब्लैकमेल किया। तो अब जब महात्मा गांधी ने दूसरे दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में नेहरू हैज साइंड, जिन्ना हैज साइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान. तो गांधी जी ने अपना सर पटका. गांधी जी बहुत बार अपने स्वयं को मारते थे जब ऐसा कुछ देखते थे तो, कि ये नेहरू ने क्या किया. और जिन्ना वो गांधी जी के पास आता है और कहता है कि देखो, मैं नेहरू ने सच सच कुछ नहीं बताया कि क्या इसके पीछे कारण क्या है, कौन मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, जो कुछ. लेकिन जिन्ना वो गांधी जी के पास आकर सच सच बता दिया उसने कि एडविना ब्लैकमेल कर रही है, मैं एक एफिडेविट बनाकर दूंगा, एक शर्त पर मुझे प्रधानमंत्री बना दो आजाद हिंदुस्तान का. तो कोई पार्टीशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. तो गांधी जी गए, अब करते क्या, इसलिए बोलते हैं मजबूरी का नाम. तो वो गए नेहरू के पास गए. तो नेहरू, उन्होंने कहा कि ये जिन्ना प्रधानमंत्री तो दूर, इसको मैं अपनी ऑफिस में एक चपरासी के तौर पर भी नहीं रखूंगा, एक कारकुन भी नहीं बनाऊंगा इसको मैं. अब माउंटबेटन ने यही एज इट इज वाक्य जाके जिन्ना को सुना दिया, नेहरू तुम्हारे बारे में ये कहता है. तब जिन्ना आग बबूला हुआ और उसने कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान अलग करके ही रहूंगा. उसे कोई लेना देना नहीं था पाकिस्तान से या मुसलमानों से. लेकिन जब ये सब, तो ये सब किसकी करनी थी, ये अंग्रेजों की, उन्होंने ये सब फूट पैदा किए से. तो नेहरू ने जब ये कह दिया कि मैं तो उसको अपना ऑफिस का चपरासी भी नहीं बनाऊंगा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आप, तब फिर गांधी जी परेशान, अब क्या करें. तो गांधी जी ने कहा ठीक है, जो कांग्रेस वर्किंग पार्टी है उसमें हम अध्यक्ष बनाते हैं, और जो अध्यक्ष बनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा भारत, आजाद भारत का. तो अब कांग्रेस वर्किंग पार्टी के 15 सदस्य थे, वोटिंग की गई, उसमें से 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले, केवल एक वोट नेहरू को, 13 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और एक वोट उनका नाम था मिस्टर सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, वो एब्सेंट थे, वो थे ही नहीं उधर. तो इसका अर्थ क्या था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था. तुरंत जब नेहरू को पता लगा तो आग बबूला होकर गांधी जी से कहते हैं कि यदि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं इस पूरे कांग्रेस वर्किंग पार्टी को तोड़ दूंगा और फिर से अंग्रेजों को यहां पर ले आऊंगा राज्य करने के लिए. क्योंकि नेहरू जानते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनके विषय में वो लोग क्या सोचते हैं. किसके विषय में? नेहरू के विषय में. तो अब गांधी जी ये जब सुने कि वापस अंग्रेजों को ये बुला लेगा, इतनी मेहनत मैंने जो की है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे सज्जन व्यक्ति, उन्होंने कहा कि भाई पहले से एक बंटवारा इन्होंने करवा दिया है, एक और बंटवारा मेरे वजह से मैंने, उनको बनने दो प्रधानमंत्री. अब इतना ही नहीं, इसके दौरान हमको आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947. इसके पहले 14 अगस्त को बंटवारा हुआ, किसका? हिंदुस्तान पाकिस्तान का. इसके एक दिन पहले महात्मा गांधी के पास एक ईरानी डॉक्टर आता है, और ये ईरानी डॉक्टर महात्मा गांधी से कहता है कि मुझे अकेले में आपसे कुछ कहना है. तो महात्मा गांधी कहते हैं कि देखो, ऐसी स्थिति है, मैं अकेले में कुछ आपसे बात नहीं करूंगा, मेरा सेक्रेटरी मिस्टर प्यारेलाल रहेगा, वो सब रिकॉर्ड करेगा. उन्होंने कहा ठीक है, उनको आने दो. तो मिस्टर प्यारेलाल जो गांधी जी के सेक्रेटरी, वो वहां पर वो शॉर्ट हैंड जानते थे, तो वो शॉर्ट हैंड में सब रिकॉर्ड करने लगे कि ये ईरानी डॉक्टर महात्मा गांधी को क्या बताने वाला है। तो ये ईरानी डॉक्टर महात्मा गांधी से कहता है कि मैं जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन हूं, पर्सनल डॉक्टर हूं मैं, और ये जिन्ना 2 महीने में मरने वाला है। इसको बोन का टीबी हुआ है, इसकी रीढ़ की हड्डी गल रही है, सड़ रही है, 2 महीने में मरने वाला है। तो मैं ये बताना आया हूं कि इसको प्रधानमंत्री बना दो, 2 महीने के बाद ये वैसे भी मरने वाला है, कम से कम ये बंटवारा तो बच जाएगा हमारा, और 2 महीने बाद फिर नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दो। तो गांधी जी को फिर से आस बंधी, वो गए ये सब लेके नेहरू जी के पास। नेहरू जी ने फिर डांट फटकार कर गांधी जी को कहा कि अगर फिर से जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने की बात कही तो मैं अंग्रेजों को यहां बुला रहा हूं वापस हमारे ऊपर राज्य करने के लिए। तब गांधी जी निश्चित किया कि अब चाहे जो भी प्रधानमंत्री ये लोग में से बने, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो जब 15 अगस्त को शपथ ग्रहण की नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने की, तो महात्मा गांधी वहां पर नहीं थे। महात्मा गांधी बंगाल में नवखाली नाम के गांव में थे। वो और नेहरू, इनका देहांत हुआ 27 मई 1964, 27 मई 1964 नेहरू का देहांत, और जिन्ना का देहांत 7 महीने पश्चात ही हो गया था हमारी आजादी के। और नेहरू का देहांत हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के वजह से, एसटीडी। तो हम देखते हैं, और वो जिन मुसलमानों के लिए वो पाकिस्तान बनाया गया था, उनमें से कोई भी मुसलमान भारत छोड़कर गया नहीं। वहां पर वो जितने मुसलमान वहां पर, वो बलूचिस्तान के, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बलूचिस्तान के बलूची, उनको पकड़ पकड़ पर उन पर थोपा गया पाकिस्तान, ये तुम शुरू करो, तुम रहो यहां पे, उन पे थोपा गया, उनको कुछ लेना देना ही नहीं था पाकिस्तान से। तो यहां पर मैं आपको ये बहुत ही सनसनी इतिहास की खबर क्यों सुना रहा हूं, सब लोग स्तब्ध लग रहे हैं आज। कि ये जो अंग्रेजों का प्रयोजन, अगर ये अंग्रेजों का प्रयोजन वो जान लेते कि ये अंग्रेज हमारे अंदर फूट पैदा करने के लिए आए हैं, तो ये हमारा भारत कितना खुशहाल देश हो सा आज भी। तो उसी प्रकार से कलयुग, कलयुग का प्रयोजन ठीक इन अंग्रेजों की तरह है कि हम आजादी के एकदम निकट, हमारी आजादी क्या है, भगवत धाम जाने की। चैतन्य महाप्रभु ने हमको ऐसे आंदोलन में सदस्य बनाया है जहां पर हमारी आजादी हमारे एकदम निकट है, परंतु कलयुग अंग्रेजों की तरह एडविना को भेजते हैं। और फिर हमारे अंदर, भक्तों के अंदर, ये नेहरू और जिन्ना बहुत अच्छे मित्र थे, पहले क्लासमेट थे, वैसे ही हम भक्तों के अंदर कलयुग करता क्या है, डिवाइड एंड रूल। ये उसका सबसे बड़ा स्लोगन है कलयुग का, डिवाइड एंड रूल, कि भक्तों के बीच में डिवीजन, बंटवारा, और फिर अपना साम्राज्य स्थापित करना। तो जब यहां पर भगवान श्री कृष्ण हमको ये लेसन सिखा रहे हैं, नेवर लूज फोकस, विच मीन्स नेवर लूज फोकस ऑन द पर्पज ऑफ कलयुगा फॉर अस, कि जब दो भक्तों के बीच में अनबन या मन मुटाव हो तो सबसे पहले हमारा फोकस कहां जाना चाहिए कि ये रेफरी कौन है, कौन ये हमारे बीच में लगा रहा है सब कुछ, कलयुग। हम लोग करते क्या है कि नहीं, उसके ऊपर हम प्रहार करते हैं कि इसके वजह से, वो हमारे ऊपर, हम मेरे वजह से, ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा षड्यंत्र कौन रच रहा है हम दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में। तो ये जिस भारत देश में हम पैदा हुए, अपने आप को आजाद भारत का सदस्य हम मानते हैं, आप जानते हैं ये जो समय हमारे आजादी का कौन सा समय था? What time did we get independence, पता है आपको? 1947, 15th August midnight, मध्यरात्रि। ये माउंट बेटन ने सब प्रकार के ज्योतिषियों को बुलाकर उसने वो टाइम निर्धारित किया था, उसको मना किया था बहुत से अपने बाकी के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने मना किया था कि ये टाइम क्यों, मध्य रात्रि क्यों चुना है भाई, ऐसे हमारे स्वतंत्रता का दिन दिन में होना चाहिए, ये मध्य रात्रि क्यों। तो उसने ज्योतिषियों को बुलाकर, एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाकर वो टाइम निर्धारित किया और उन्होंने कहा कि मध्य रात्रि में यदि भारत को आजादी मिलेगी तो जीवन पर्यंत ये भारत हर समय दुर्दशा में रहेगा। It was the most inauspicious time for us to get independence. मैंने जब ये सब पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसी सरकार की नौकरी नहीं करनी। और हम पंडित कहते हैं इनको, इसलिए मेरे एक मित्र थे, उनको जब मैंने वो किस पुस्तक दी, वो यहां से ही थे महाराष्ट्र से, तो उन्होंने नाम दिया था लोचा नेहरू, चाचा नहीं। तो ये थी शुरुआत, आजाद हिंदुस्तान की शुरुआत ये थी। और अब हम क्या देख रहे हैं, वो नेहरू ने जो कहा था कि हमारे आजाद हिंदुस्तान के मंदिर होंगे हमारी फैक्ट्रियां, हमारे इंडस्ट्रीज, किनके द्वारा दिए गए, इन अंग्रेजों के द्वारा दिए गए। तो हम देखते हैं, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये सारे मल्टीनेशनल कंपनी हमारे भारत के ऊपर राज्य कर रही है। तो जहां पर शुरुआत इस प्रकार से हुई, हमारे अंदर फूट पैदा कर हमारे ऊपर राज्य किया गया, और आज हम देखते हैं कि उन्हीं की परंपरा में उस गद्दी पर केवल लुटेरे बैठे हुए हैं। इतना जो ये सब आंदोलन चल रहे हैं, अन्ना हजारे इत्यादि, क्यों इतना सब कुछ चल रहा है, सब लुटेरे बैठे हुए वहां पर। तो इसकी शुरुआत यदि हम वहां से उनको बंद कर देते, किनको, इन अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतने लंबी लंबी मीटिंग बिठाकर उनका एक ही उद्देश्य था कि कैसे हम इस भारत देश को तबाह करें, और बहुत बुद्धिमानी से देखो कैसे उन्होंने खुफिया एजेंसी से पता लगाया कि ये नेहरू और जिन्ना और एडविना, और फिर वो माउंटबेटन को भेजकर ये सब कुछ। तो कम से कम हम भक्तों के समुदाय में जो रह रहे हैं, हमको ये जो फोकस है कलयुग का, ये सब कलयुग की नीति, केवल अंग्रेजों की नहीं, कलयुग की नीति है डिवाइड एंड रूल। तो हमें कितना सावधान इनसे होना चाहिए, ऐसे षड्यंत्रों से, और हमारा फोकस भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने, उनके भक्तों को प्रसन्न करने में लगना चाहिए। ये होगा हमारा क्रांतिकारी आंदोलन इस हरे कृष्ण आंदोलन में। और यदि हम एकजुट होकर ऐसे क्रांतिकारी बने, ऐसे नहीं जिनका कोई चरित्र नहीं, ऐसे क्रांतिकारी बने कि जो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों को निस्वार्थ भाव से प्रसन्न करने के लिए लगे हैं, तब जाकर हम सबको एक साथ सही रूप में आजादी मिलेगी और वो होगा फिर हमारा आजाद भारत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। नहीं, स्प्लिट हुआ ना? नहीं, कांग्रेस वर्किंग पार्टी पूरा स्प्लिट हो गया था, क्योंकि 13 जो थे उनका वोटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के तरफ था। हाँ नहीं, बाद में नहीं, उस समय हो गया था। हाँ हाँ गलत किया, सरासर गलत किया, सरासर गलत किया। यहां तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से यही कहूंगा कि महात्मा गांधी को उस समय आवाज उठाकर पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि आवाज उठाकर वहां पर इन सब को चुप करना चाहिए था। और महात्मा गांधी के पास बहुत शक्ति थी, उनके पास पूरी जनता थी उनके साथ, क्योंकि हाँ उनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा, तो उनके पास वो शक्ति थी जिसके द्वारा इन सब को चुप करा सकते थे। तो केवल अहिंसा अहिंसा, तो मेरे हिसाब से ये अहिंसा किस काम की? अब देखते हैं हम कितनी हिंसा हो रही है उसके वजह से, ये जो बंटवारा हुआ। हाँ, जो मैंने बताया कि कलयुग, ये सारे लक्षण कलयुग के हैं। हाँ, जो राष्ट्रवादी होते हैं वो समझते हैं कि अंग्रेजों ने किया, अंग्रेज तो केवल एक माध्यम थे, ये कलयुग के लक्षण हैं कि फूट पैदा करना, डिवाइड और रूल करना, और वो कलयुग सब जगह पर व्याप्त है। नहीं, असत्य के साथ कैसे रहना अच्छा है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कौरवों से अलग किया, तो क्यों अलग किया? क्योंकि वो असत्य अधर्म के झंडे के नीचे थे कौरव, और पांडव जो थे वो धर्म के झंडे के नीचे थे, अलग किया भगवान ने उनको। हाँ जी, आप बताइए कौन सा राज्य? राजस्थान। हाँ, जनगण मन। हाँ, और दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से हमारे हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे जगहों पर म्यूजियम में माउंटबेटन की चीजें पड़ी हुई हैं, नाम है माउंटबेटन रोड, ये सब। तो देखिए, लानत है हमारे ऊपर कि इतना सब कुछ होने के बाद जो सबसे बड़ा और आखिरी शत्रु हमारा रहा, हम अब तक किसी न किसी प्रकार से उसको रखे हुए हैं। तो ये सब सीखने की बात है। हालांकि हमारा मुख्य फोकस बाद में शास्त्र के ऊपर कि ये सब तो जो कुछ हुआ शास्त्र के दृष्टिकोण से तो ये केवल समुद्र की एक छोटी सी लहर, जस्ट अ रिपल, लेकिन जो इसकी सीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये जो कलयुगी प्रवृत्ति है डिवाइड एंड रूल, कलह पैदा करना, उससे बचे, ये सीख है।
हरे कृष्णा भाई,
हाँ हरि बोल।
धन्यवाद प्रभु, बहुत सुंदर क्लास है प्रभु। आपने बहुत अच्छा ये बताया कि इंटेंशन को हम नहीं जान पाते, बिहेवियर को हम देखते हैं। तो प्रभु अगर दो भक्तों के बीच में ऐसे हुआ हो कि आपने जैसे ही कहा कि वो कलयुग का एक फॉर्मूला है कि डिवाइड एंड रूल, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो तो वो दो भक्त अभी कुछ कारण की वजह से एक दूसरे के साथ उनका बन नहीं रहा है, जो भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कलयुग का प्रभाव हो, तो एक भक्त अगर दूसरों के शरणागत लेना चाहता है तो किस प्रकार से उस भक्त को मनाए कि ऐसे गलती हुई या कैसे वो उसको,
जैसे हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण क्या होता है कि यदि करोड़ों जन पहले भी किसी जीव ने भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी भी भक्ति की, भगवान उसको परमानेंटली ध्यान में रखते हुए उसकी मदद करते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण, हम यदि किसी के साथ, जैसे पूछ रहे हैं कि किसी भक्त का किसी दूसरे भक्त के साथ नहीं जमता है ना, बोलते हैं उल्टा, बोलते 36 का आंकड़ा है, जमना तो छोड़ो। तो हमारा दृष्टिकोण भी, हम हमारे जो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है उनके पदचिन्हों पर चलते हुए होना चाहिए। कि हमने इसकी चर्चा की थी कि सबसे पहले अगर हम उसके अंदर कोई भी गुण नहीं देख पा रहे, ढूंढ ढूंढ कर, दिया लेकर भी कोई गुण नहीं ढूंढ पा रहे उसके अंदर, तो कम से कम ये देखें कि वो मनुष्य है। वो तो दिख रहा है ना, मनुष्य बनना भी करोड़ों जन्म के पुण्यों के बाद मिलता है। सो आवर फोकस शुड बी दैट एट लीस्ट ही हैड सम सिंस, इवन इफ ही इज नॉट अप टू द मार्क राइट नाउ, ठीक है, एक्सेप्टेड, but at least at some point of time he had some sincerity because of which he came to Krishna consciousness, which means he has the potential to again become sincere as he was sincere initially. That is called hope against hope. और दूसरा तरीका कि जिस भक्त के अंदर हम अगर कुछ खोट देख रहे हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं, तो क्या हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें क्या हम शुद्ध हैं? आर वी प्योर डिवोटीज? तो फिर हम, मतलब जो सबसे शुद्ध हैं वो केवल गुड क्वालिटीज देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनसे शुद्ध कौन है? उनके पास तो पूरा राइट है फॉल्ट फाइंड करने का, बिकॉज ही इज फॉल्टलेस। यदि किसी के पास पूरा अधिकार है गलतियां ढूंढने का, तो वो वहां खड़े हैं ऊपर ऑलरेडी, सॉरी, वो पोजीशन और कोई ले नहीं सकता। तो अगर हम गलतियां ढूंढ ढूंढ कर उस पर फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हम दूध के धोए हुए हैं क्या, ये क्वेश्चन। तो फिर नम्र बनो, यदि नहीं है तो फिर नम्र बनो, और जो उनके अंदर जो भी गुण हैं या भी थे, उनके ऊपर फोकस कर हम उन गुणों को हमारे अंदर लाने की कोशिश करें, और यदि वो गुण उनके अंदर थे अभी नहीं है तो उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
सॉरी प्रभु जी, प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे हम प्रचार करते हैं स्पेशली कॉन्ग्रीगेशन बॉयज ब्रह्मचारीज में, तो प्रचार करते समय प्रभु जी कई बार हम कुछ लोगों को टाइम देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं, और जो भी उनका उठाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो एटीट्यूड ले, अभी इंटेंशनली कर रहे हैं कि नॉन इंटेंशनली होता है वो समझ में नहीं आता, लेकिन वो भक्ति के कुछ अंगों को उस प्रकार से स्वीकार नहीं करता जैसे हैं चाहिए एक साधक का जीवन। तो फिर कई बार ये होता है कि हमारा एक उत्साह डाउन हो जाता है कि हम लोग इसको टाइम दे रहे हैं, इसको इतना कह रहे हैं, जो भी इसकी फैसिलिटीज़ है उसको दे रहे हैं हम लोग, तो वो उठा नहीं रहा है, इससे हमारा इंथुजियाज्म लूज हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग ग्रुप में जब प्रचार करते हैं तो जो सामने वाले डिवोटीज़ है जो देख रहे हैं कि ये इसको टाइम दे रहे हैं, इसको जो भी चाहिए वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये वो उस स्तर तक नहीं आ रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है, और फिर उनका भी एक अपराधिक भावना हो जाता है। तो एज अ लीडर, क्योंकि ठीक है उसके अंदर जो कृष्ण भावना है वो आगे चल के बढ़ेगी, भगवान उसको अलग दृष्टि देख रहे, लेकिन एज अ लीडर तो हमको किस भावना से लेना, या उस समय चुप बैठना है या फिर उसे वो करने देना चाहिए, जिस कारण जैसे कहा नेहरू जी ने किया तो पूरा अभी सत्यानाश ही हो रहा है, उस प्रकार से हमें ये क्या करना चाहिए। तो हाँ बैलेंस
देखिए, सबसे पहले एक प्रचारक जो है उसको ये समझ लेना चाहिए कि हम नहीं प्रचार कर रहे, उस व्यक्ति को जो भी उत्साह मिल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा डायरेक्टली दिया जा रहा है, हम केवल उसको भगवान से मिलाने का काम करते हैं बस। तो अगर ये भावना प्रचारक की होगी तो फिर वो भगवान के ऊपर निर्भर है कि उसका परिणाम क्या निकले। हम यदि अपेक्षा रखते हैं कि भाई मैं इसको इतना टाइम दे रहा हूं, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, तो भगवान हमको टेस्ट करते हैं फिर, अच्छा तू कर रहा है, तू सोचता है तू कर रहा है, तो भगवान उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रखते हैं, देख अभी कर जितना करता है। तो हम लोग अपना सब कुछ दे रहे हैं और वो व्यक्ति एक माला भी नहीं उठा रहा है करने के लिए, तो कई बार हमको शुद्ध करने के लिए भगवान उसको होल्ड पे रखते हैं कि भाई इस भ्रम में मत रहो कि तुम प्रचार करके उसको भक्त बना रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे, हम खाली पोस्टमैन, जैसे प्रभुपाद ने कहा लेटर लिखा हुआ है भगवान ने, एड्रेस किया हुआ है बद्ध जीवों को, हमको खाली डिलीवर करना है, और उसको पढ़ के वो खुश होगा या ना खुश होगा ये हमारा लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी के मरने का टेलीग्राम है या मनी ऑर्डर है ना, मनी ऑर्डर से खुश हो जाता है ना, और मरने के टेलीग्राम से दुखी हो जाता है, तो वो हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना प्रभुपाद, हमारा सिद्धांत क्या, एज इट इज, प्रभुपाद ने भी एज इट इज प्रस्तुत किया। तो प्रचार के अंदर व्यक्तिगत रूप से जो मैं इतने सालों से कर रहा हूं, मेरा अनुभव ये है कि ये जो हमारी अपेक्षा के अनुसार कोई व्यक्ति कुछ करता नहीं, ये प्रचार को और एक्साइटिंग भी बनाता है। यदि हमारी अपेक्षा के अनुसार सब कुछ होने लगे तो फिर हमको हमारा उत्साह चला जाएगा, तो मतलब हमको इतना हमारे ऊपर गर्व होने लगेगा कि भाई मैं अगर एक लेक्चर दूंगा तो जितने बैठे हैं 16 माला लेंगे ही करना शुरू, तो हम फिर और आगे कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे, फिर हमारा एक ही लेक्चर रहेगा जो 16 माला कराने वाला, तो इतने अलग अलग तरीके से हम क्यों प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि सामने वाला पार्टी इतने प्रेजेंटेशन के बाद भी हिल नहीं रहा है, ये सेमिनार वो सेमिनार, ये प्रोग्राम वो रिट्रीट, ये पिकनिक यात्रा, कितना कुछ करने के बाद भी वो उस हाथी की तरह है कि 10 लोग लगा रहे हैं फिर भी वो हिल नहीं रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमारी कितनी तैयारी हो रही है, हमारा कितना अध्ययन हो रहा है, तो भगवान कई बार हमको टेस्ट करने के लिए हमको रिजल्ट्स नहीं देते हैं। प्रभुपाद उन्होंने जब प्रचार शुरू किया तो ऐसा नहीं था कि भर भर के लोग आ रहे थे, प्रभुपाद कितनी बार कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा करते, कोई नहीं आता था, और कोई आता था प्रभुपाद उस पर अपेक्षा करते थे। एक था ऐसा व्यक्ति, प्रभुपाद ने इतनी अपेक्षा उसके की, उसने टाइपराइटर चोरी करके चला गया। यहां सर्वधर्मान परित्यज की शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं, शुद्ध भक्ति सिखा रहे हैं, वो टाइपराइटर चोरी करके चला गया। तो प्रभुपाद के साथ ये सब हुआ। तो इसलिए यहां पर हमारे अंदर वो एक स्फूर्ति और वो एक एक्साइटमेंट, इसलिए भगवान उसको सस्पेंस में रखते हैं। एक ये कारण है हमको शुद्ध करने के लिए, और दूसरा कारण कि भगवान ने ऑलरेडी, कई बार आप देखो कि आप जिससे बिल्कुल कोई अपेक्षा रखते नहीं, मेरे साथ कितनी बार हुआ है, मैं बॉम्बे में एक प्रोग्राम, कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम करता था, एक व्यक्ति वो 5 साल तक हर सैटरडे प्रोग्राम में आया, वो 5 साल लगातार कभी एक प्रश्न नहीं पूछा, कभी मुझसे मिला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आके बैठता था। और कई लोग आके इतने प्रश्न पूछते थे, ये शास्त्र से वो शास्त्र से ऐसे क्या करना चाहिए, ऑफिस में कैसे करना चाहिए, ये वो, कभी माला उठाए नहीं वो लोग, पूछते बहुत थे। ऐसा लगता है कि इतने प्रश्न पूछ रहे हैं कि बस अब परीक्षित महाराज के बाद इनका ही नंबर है। और ये व्यक्ति, इसने एक प्रश्न नहीं पूछा 5 साल में। 5 साल बाद जब मुझे दूसरा प्रोग्राम करने के लिए कहा गया, तो वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं आपको खाली, आप अभी नहीं आने वाले हैं, इन्फॉर्म किया गया, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मैं पिछले 1 साल से 16 माला कर रहा हूं। तो दोनों, जब हम अपेक्षा नहीं रखते और वो 16 माला कर रहा है, तो फिर हमको क्या लगता है, अरे मैंने तो इसको कभी बोला नहीं। हाँ, हम बोलते भी नहीं है, वो बोलते हैं। और फिर मैंने इसको इतना बोला इतना बोला इतना बोला, फिर भी ये नहीं कर रहा है, उसमें भी हमको क्या समझना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि भगवान चाहते हैं, या इसके जो भी कर्म होंगे, जो भी वजह कारण के वजह से यहां पर ऐसे है। तो ये हमको शुद्ध करने के लिए और प्रचार को और एक्साइटिंग बनाने के लिए। तो जब हम ये भगवद गीता का श्लोक बोलते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये केवल 6 सेशन कोर्स में दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होता है, ये हमारे लिए भी है। भगवान ने खाली जो नौसिखिया उनके लिए श्लोक नहीं दिया, हमारे लिए भी दिया है, और हमारे प्रीचिंग में, साधना भक्ति में भी मा फलेषु कदाचन।
समय देते, टाइम देते, तो बाकी वो अप टू डेट थोड़ा बहुत होता नहीं, तो फिर बाकी लोग इस एंगल से देखते हैं कि उनको समय दिया, होने दे, तो उनकी अपराध युक्त भावना हो जाती है।
क्या समय,
जैसे कि उनको, जैसे कुछ हमारे ग्रुप के बच्चों को कहा कि आप कंपलसरी आना है मंगल आरती या जपा सेशन में, और जिसको टाइम दिया वो ही नहीं आता, और जो नहीं आए तो उनकी अपराध युक्त भावना हो जाती है कि क्या ये टाइम दे ले रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, तो फिर उसको बोलते
दूसरों की,
हाँ दूसरों, तो वो कैसे बचे,
हम लोग कर रहे हैं हमको टाइम नहीं देते, और जो नहीं कर रहे हैं उनको टाइम दे रहे,
हाँ उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उसकी अपराध युक्त भावना उनकी हो जाती है, थोड़ा बहुत ये हो जाता है।
ये पूछ रहे हैं कि
उनको
वो अपनी भावना कैसे सुधारें,
कैसे बनाए रखे, मेंटेन।
ऐसे ही है कि अगर किसी घर में कोई एक बच्चा बीमार ज्यादा है तो माता पिता उस पर ज्यादा ध्यान देंगे ना, दूसरा बच्चा स्वस्थ है और वो बोले कि अरे मेरे को तो पूछ ही नहीं रहे, ये बीमार है ठीक नहीं हो रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान दें। तो जो स्वस्थ बच्चा है उसकी धारणा क्या होनी चाहिए कि एक कॉम्प्लीमेंट है, मुझ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, बार बार मेरे को पूछते रहना ध्यान दे। कई बार ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे को इतना फोन कर करके प्रोग्राम्स के लिए बुलाते हैं तो कितना प्रेम कर रहे हैं मेरे से लोग, ये समझना चाहिए कि मैं कितना एब्सेंट रहता हूं। कि ये नौबत आ गई है कि मेरे को इतने एसएमएस, इतने फोन, इतने अनाउंसमेंट करने के बाद मैं एक प्रोग्राम अटेंड करता हूं, तो बीमार अवस्था है वो। तो उनकी भावना यही होनी चाहिए कि भाई ये उनको टाइम दे रहे हैं, मतलब उनको ज्यादा जरूरत है। ये मतलब नहीं कि मुझे जरूरत नहीं है, पर इस समय वो ज्यादा पीड़ित है, उसको ज्यादा जरूरत है। ओके, बहुत लेट हो गया आज। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।